ओम शांति। आज कौन सा दिन है? रविवार। और शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। तो सबसे बड़ा टीचर कौन है? स्वयं भगवान। टीचरों का टीचर, शिक्षकों का शिक्षक, सत शिक्षक श्री बाबा हमारे दिल के आशियाने में है। अभी गीत सुना ना, उसने हमारे दिल के आशियाने में जगह बना ली है, हमारी तकदीर की तस्वीर बना रही है। वैसे हर मनुष्य अपने आप में टीचर होता है, लेकिन परम शिक्षक श्री बाबा ने जो हमको इतनी बड़ी सर्वोत्तम शिक्षा से श्रृंगारित किया है, ऐसी शिक्षा संसार में कहीं भी नहीं मिलती। जो हमारे जीवन को नई राह दिखा दी, हमारे पथ प्रदर्शक हैं। तो एक तो शिव बाबा को सबसे पहले नमन, और दूसरा हमारी टीचर बहनें। बाबा ने उनको टाइटल दिया है, कौन सा एक अपने समान का टाइटल दिया है, कौन सा टाइटल दिया टीचर बहने बताएंगे? गुरु भाई। हाँ, तो टीचर बहने भी गुरु भाई हैं। तो ऐसी टीचर बहने जिन्होंने इतना त्याग तपस्या के बल से इतने ब्राह्मणों की फुलवाड़ी को सींचा है, घर गृहस्थ से दूर रहकर जो लौकिक संबंधी हैं, लौकिक सुख सुविधाओं को त्याग कर विश्व की आत्माओं को रास्ता बताने के लिए अपना जीवन के अपने जीवन का बलिदान कर दिया, तो ऐसी टीचर बहनों को भी बहुत बहुत नमन है। और संसार में जो लौकिक टीचर हैं उनकी भी भूमिका कम नहीं होती है। जो टीचर अपने सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं, अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करते, वो समय पर स्कूल में जाएंगे, हर बच्चे को एक अपनेपन की भावना से शिक्षा देते हैं। कई टीचर जो दूर दराज गांव में होते हैं, कितना किलोमीटर पैदल चलते हैं, वहाँ कोई सुख सुविधाएं भी नहीं होती हैं इतनी, वो अपने तन मन धन से बच्चों के भविष्य को संवारते हैं। और कई ऐसे बच्चे होनहार जो देश का भविष्य बन जाते हैं। तो उन टीचरों को भी नमन। और बाकी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, बाबा के बच्चे हैं, जो अपने चरित्र से अपने जीवन से शिक्षा देते हैं, मुख से शिक्षा देना बहुत आसान काम है, लेकिन जिन्होंने अपने चरित्र को श्रेष्ठ बाण बनाया है, जिनका चरित्र बहुत अलौकिक है, आभामय है, दूसरों को प्रेरणा देने वाला है, जिनका चरित्र एक खुली किताब की तरह है, जो घर गृहस्थ में रहते इतनी समस्याओं का सामना भी करते हैं, सबको एडजस्ट करके चलते हैं, कई कुछ सुनना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बातें समानी पड़ती हैं, फिर थोड़ा टाइम निकाल कर मधुवन सेवा में आते हैं, कैसे न कैसे करके यहाँ बाबा के घर में पहुँचते हैं। तो ऐसे घर गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों वो भी टीचर के समान है, उनको भी बहुत बहुत नमन। बाबा कहते अपने सोमान को भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो हम तस्वीर बना रहे हैं, नए विश्व की तस्वीर बना रहे हैं, तकदीर की तस्वीर, आज की सारी मुरली तकदीर की तस्वीर के ऊपर थी। भविष्य विश्व के तकदीर के निर्माता हैं हम। तो बाबा ने हर एक बच्चे को इतना शक्तिशाली बना दिया है, इतना प्रेरणा स्रोत आदर्श स्रोत बना दिया है कि अभी पूरे संसार की नजर कहां पर है? अभी ब्रह्मा कुमारीज के ऊपर ही जा रही है। दो तीन दिन पहले एक फिल्म अभिनेता की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई है ना। तो सभी चैनलों ने कैसे ब्रह्मा कुमारी के बारे में बताया, जो उनका अंतिम संस्कार चैनल वाले बताते थे कि ब्रह्मा कुमारी समाज की विधि के अनुसार ही हुआ। जो उनके माता जी थे, कैसे उन्होंने अपने बेटे को भी उन संस्कारों में बांधा, अध्यात्म के प्रति झुकाव। जो यहाँ शांतिवन में भी 3-4 बार आ चुके थे, माता जी तो उनके ज्ञान में है ही हैं, लेकिन उनके जो बेटे हैं वो भी 2-3 बार आ चुके थे, सिद्धार्थ शुक्ला। तो सभी चैनल वाले ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बता रहे थे। और आज की डेट में अगर YouTube पर सर्च करेंगे तो एक भाई बता रहे थे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो उसके ऊपर वीडियो अपलोड होते हैं वो किसके होते हैं, ब्रह्मा कुमारी के होते हैं। तो बाबा का हर बच्चा पूरे जोर शोर से बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए लगा हुआ है, संसार को परिवर्तन करने के लिए लगा हुआ है, स्थूल सूक्ष्म परोक्ष अपरोक्ष रूप से। हर ब्राह्मण आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है, इसलिए अपनी विशेषताओं को कभी हमें भूलना नहीं है, क्योंकि जब भी हम अपनी विशेषताओं को भूल जाते हैं तो अंदर में नकारात्मक वृत्तियां जन्म लेती हैं, व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प, निराशा के संकल्प, टेंशन के संकल्प, डिप्रेशन के संकल्प। तो कभी भी अपनी विशेषताओं को नहीं भूलना। हम सब ब्राह्मण आत्माएं अपने आप में विशेष है। जिसने बाबा के ज्ञान को जाना, जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ी है, भगवान का वरदानी हाथ जिसके सिर पर पहुंच गया है, जिसने मधुबन की धरनी में अपना कदम रख दिया है, वो बहुत 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 पुण्य आत्मा है। वो संसार की जैसे तकदीर की तस्वीर है, इसलिए कभी भी अपनी विशेषताओं को नज़रअंदाज नहीं करना। जब हम अपनी विशेषताओं को स्मृति में रखते हैं, जो बाबा ने हमारे में विशेषताएं भरी हैं, पहले जो हमारे में थी नहीं, उन विशेषताओं को जब हम अपने स्मृति में स्वरूप में लाते हैं तो हमारी स्थिति समर्थ बनती जाती है। और जब हमारी स्थिति समर्थ बनेगी तो हम दूसरों की विशेषताओं को देखने के आदति बन जाएंगे। जब तक हम अपनी विशेषताओं को नहीं देखेंगे निर्माणतापूर्वक, अहंकार पूर्वक नहीं, निर्माणतापूर्वक जब हम अपनी विशेषताओं को देखते हैं तो ही दूसरों की विशेषताओं को देखने की आंख हमारी खुलती है। नहीं तो दूसरों के अवगुण दिखाई देते हैं, क्योंकि अपने विशेषताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, रोज सवेरे उठकर सोचो अपने आप को, मैं कौन हूँ? अवतरित आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, परमात्मा की साथी हूँ। कितने हजारों टाइटल बाबा देते, तो एक एक टाइटल पर हम स्थित होकर अगर उसका महसूसता करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। और जो संस्कार होते हैं वो काम करते हैं स्वतः, उन पर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आज की मुरली पर हम चर्चा करेंगे। सभी ने मुरली तो सुनी होगी ना, सभी ने, है ना? अच्छा, जिसने नहीं सुनी वो हाथ उठाओ। सभी ने सुनी है ना, तो बीच में कोई बहाना तो नहीं मार सकता ना। अभी कुछ भी पूछेंगे तो सब याद आएगा कि बोलेंगे नहीं उसमें पॉइंट याद है, तुम वहां थे नहीं हम। क्योंकि मुरली तो आजकल सबके पास ही होती है, भले हम सफर कर रहे हैं, घर में रहते हैं, नौकरी धंधे में जा रहे हैं, यात्रा पर हैं, कहीं भी हैं, मुरली तो सबके पास है। इसलिए बाबा कहते हैं कि उलाना नहीं दे सकता है, खुला बाजार है। आज की मुरली में था ना, खुला बाजार है। तो इस बाजार में क्या क्या मिलता है, जितना चाहे उतना ले सकते हो, कोई अंकुश नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, कोई लगाम नहीं है इस पर। तो इस खुले बाजार से हमको क्या क्या लेना है वो हमको देखना है, क्योंकि हमको एक बहुत सुंदर तस्वीर का निर्माण करना है ना। देवताओं की तस्वीर देखते हैं, लक्ष्मी नारायण की, श्री कृष्ण की, तो तस्वीर आकर्षित क्यों करती है वो? और जो हम तस्वीर किसी की देखते हैं तो उसमें हमारी नजर सबसे पहले कहाँ जाती है, चेहरे पर जाती है। तो ये चेहरा हमारा एक आईने का काम करता है, दर्पण का काम करता है। और चेहरे पर भी सबसे पहले नजर कहाँ जाती है, आंखों पर जाती है। तो ये अपनी आंखें कैसी होनी चाहिए, बाबा ने आंखों के बारे में क्या क्या बताया, रूहानियत भरी होनी चाहिए। 3 दिन पहले मुरली में था ना, तुम बच्चे रूहानी कारोबार करते हो, रूह समझकर कोई भी कर्म करते हो तो आत्मा जैसे निर्विकार बनती जाती है। तो अगर हम रूहानी स्मृति में रहते हैं तो हमारी दृष्टि परिवर्तन हो जाती है, देह दिखाई देगी लेकिन देह के अंदर निवास करने वाली जो आत्मा उसकी चमक चेहरे पर स्पष्ट रूप से अनुभव होगी, हमारी दृष्टि आत्मिक हो जाएगी, कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी, हमारी दृष्टि में अलौकिकता बढ़ती जाएगी, हमारी दृष्टि में कुछ नजरों से निहाल करने की शक्ति बढ़ती जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी, किसी को देखने से चलाई मान आंखें नहीं होंगी। नहीं तो बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा धोखा देने वाली आंखें हैं। तो इन आंखों को बड़े प्यार से समझाना है, ये हमारी बहुत सहयोगी साथी हैं। जब तक हम अपनी कर्मेंद्रियों को सहयोगी साथी को प्यार से नहीं समझाएंगे तब तक वो उत्पात मचाते रहेंगे। हमें दुख कहां से मिलता है, अपने कर्मेंद्रियों से मिलता है, स्थूल या सूक्ष्म। हम बुरा देख लेते हैं, आत्मा इन आंखों से बुरा देख लेती है, सब रिकॉर्डिंग हो गया। मुख से बुरा बोल दिया वो भी रिकॉर्डिंग हो गया, मन से बुरा सोच लिया वो भी अंदर रिकॉर्डिंग हो गया आत्मा के अंदर। इसलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो। तो रोज सवेरे उठ के बाबा से वरदान लेना है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, मन बुद्धि संस्कार मेरे नियंत्रण में है। इन संकल्पों को बार बार दोहराना है ताकि वो संकल्प कर्मेंद्रियों में समा जाए, नहीं तो सारे संकल्प ऊपर ऊपर तक ही रह जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन, अभ्यास और चेकिंग। तो अटेंशन चाहिए बार बार, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, कर्मेंद्रियां पूरी नियंत्रण में है और मेरी बहुत साथी सहयोगी हैं, ये कर्मेंद्रियां हमारी मित्र हैं। अगर हमारा इन कर्मचारियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आत्मा मालिक तो दुखी रहेगी रहेगी। तो दुख और सुख के सहभागी हम स्वयं ही अपने आप ही बनते हैं, दूसरा कोई हमें को दुख नहीं देता है, हम खुद ही दुख और सुख की रिकॉर्डिंग पूरा दिन चालू करते रहते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें जीवन में क्या रिकॉर्डिंग करनी है। तो इस तस्वीर में सबसे पहले हमारी आंखें सिविलाइजेशन, जो बाबा कहते हैं सिविल दृष्टि होनी चाहिए, निर्दोष दृष्टि होनी चाहिए, शीतल दृष्टि होनी चाहिए, अलौकिक दृष्टि होनी चाहिए, रूहानी दृष्टि होनी चाहिए, आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए, रूहानियत भरी होनी चाहिए, अलौकिक दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। तो चिंतन को बढ़ाना है ताकि इन आंखों को थोड़ा सुकून मिले, नहीं तो इन आंखों में दर्द होता रहता है क्योंकि अवगुणों को देखते रहते हैं। सबसे पहले तो आंखें देखती हैं ना अवगुणों को, कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो सामने पहले क्या आएगा, उसका चेहरा ही आता है, बोल तो बाद में याद आएंगे। तो इन आंखों को बड़े प्यार से अपना सहयोगी साथी बनाना है क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में तीव्र गति के लिए हमारी ये कर्मेंद्रियां बहुत सहायक होना जरूरी है। तो हम भविष्य की तकदीर की तस्वीर के निर्माता हैं, तो हमें अपनी कर्मेंद्रियों को भी शीतल शांत शुद्ध पवित्र बनाना है। उसके लिए बाबा ने कुछ दिन पहले एक बहुत सुंदर युक्ति बताई थी, कर्मेंद्रियों को शीतल करने की विधि, कौन सी बताई थी याद है किसी को? अगर वो प्रैक्टिस करो तो सारी कर्मेंद्रियां धीरे धीरे शीतल होती जाएंगी, कौन सी? अशरीरी बनने की। बाबा ने कहा था अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो तो ये कर्मेंद्रियां शांत शीतल होती जाएंगी और देह अभिमान टूटता जाएगा, निरंतर योगी स्वतः योगी बनते जाएंगे, आत्मिक दृष्टि हो जाएगी, भाई भाई की दृष्टि हो जाएगी। तो जो अशरीरीपन का अभ्यास है ना सबसे बेस्ट है ये, क्योंकि जब तक हम इस बॉडी में चिपके हुए हैं, इस बॉडी का ही चिंतन कर रहे हैं, बॉडी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, भले स्वयं का आकर्षण है दूसरों का आकर्षण है, तब तक हम ऊपर उड़ नहीं सकते। इसलिए आज की मुरली में भी बताया अशरीरीपन का अभ्यास फ्यूचर में क्या बनाएगा, हाँ क्या बताएगा, निरोगीपन। और दूसरी बात तंदुरुस्ती, दूसरी बात से दीर्घायु अर्थात लंबी आयु। तो और उसका प्रभाव अभी पड़ेगा क्योंकि भविष्य की तस्वीर तो अभी हम बना रहे ना, तो जितना हम शरीर अवस्था का अनुभव करेंगे उतना हम अभी भी निरोगी बनते जाएंगे, क्योंकि शरीर का चिंतन शरीर को बीमार कर देता है, आत्मा का चिंतन शरीर में अलौकिक शक्ति भरता है, क्योंकि आत्मा मालिक है। नौकर अपना ही चिंतन करता रहेगा तो क्या होगा, नौकर जैसे संस्कार हो जाएंगे ना, नौकर जैसी वृत्ति हो जाएगी। लेकिन जब मालिक चिंतन करेगा तो मालिक का प्रभाव नौकर पर पड़ेगा। तो ये शरीर भी क्या है, कर्मेंद्रियों से एक हमारा घर है, इस घर पर मालिक का प्रभाव पड़ना चाहिए, ना के नौकरों का प्रभाव पड़ना चाहिए। तो अशरीरीपन का अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। तो आज कौन किसको देख रहा है, आज की मुरली में बाबा ने किसको देखा, 1988 की मुरली है 15 मार्च। ब्राह्मण जीवन जो है भविष्य की तकदीर की तस्वीर बनाने का, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। तो किससे बाबा मिल रहे हैं, कौन किससे मिल रहा है, कौन सा टाइटल था आज, विश्व रचयिता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले, श्रेष्ठ तकदीर के तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। अगर हम एक ही लाइन पर चिंतन करें, उसको बढ़ाते चले बढ़ाते चले, तो बुद्धि शक्तिशाली बनती जाएगी, मन व्यर्थ की तरफ जाएगा नहीं। तो स्वयं भगवान हमारे से बात कर रहे हैं और हमारी तस्वीर को देख रहे हैं, कितना बड़ा नशे की बात है, कितनी खुशी की बात है। बाबा कहते हैं अभी तुम जैसा सोचते हो उसी अनुसार उसका प्रभाव कहां पड़ता है, पूरे विश्व के ऊपर पड़ता है, अभी भी और फ्यूचर में भी। अभी के तुम्हारे कर्म क्या निर्धारित करते हैं, भविष्य का फल, और भविष्य फल तो बाद में होगा, लेकिन उससे पहले अभी हम अगर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो क्या क्या होगा, खुशी मिलेगी। अगर किसी को समय पर सहयोग दे दो, किसी को दो बोल मीठे बोल बोल दो, किसी को रास्ता दिखा दो, किसी को कुछ स्थूल में सहयोग चाहिए वो ही दिखा दो, किसी को भोजन की जरूरत है भोजन ही करा दो, कितनी दिल से दुआएं निकलती हैं। तो वो श्रेष्ठ कर्मों का फल जो है वो अभी जो खुशी है भविष्य की खुशी से, भविष्य की खुशी तो कम है लेकिन अभी की खुशी जो है वो है सबसे ऊंची है, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, देवते हैं तो दैवी संप्रदाय के हैं, अभी हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, अभी स्वयं भगवान हमारे साथ में है। तो अभी के जो श्रेष्ठ कर्म है वो हमारे भविष्य के फल का आधार है, निर्धारित करते हैं। और दूसरी कौन सी बात बताई, अभी के श्रेष्ठ संकल्प से क्या होता है, श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं। तो जो भी हम संकल्प करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो संकल्प भी करते हैं, संकल्प तो हमारा बीज है, जो संकल्प करते हैं उसी के आधार पर हमारी दिनचर्या बनती है, हमारी जीवन शैली बनती है, उसी के अनुसार हमारी आदतों का निर्माण होता है। जो संकल्प अंदर में आ रहे हैं वही तो मुख से बोल रहे हैं ना, और वही हमारे आदतों में जाते जा रहे हैं, वही हमारे कर्मेंद्रियों में समाते जा रहे हैं, और ये कर्मेंद्रियां भी उसी अनुरूप कार्य करेंगी, इनको फिर दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे भोजन करते हैं तो भोजन हाथ को बोलना पड़ता है कि तुम इधर जाओ और इधर लेके आ, बोलना पड़ता है, नेचुरल है ना। तो ऐसे ही कर्मेंद्रियों को भी याद की अभ्यास, याद की आदत नेचुरल पड़ जानी चाहिए, है ना। जैसे पहले बताया माँ बाप को याद करते हैं तो माला पकड़ते हैं मम्मी डैडी मम्मी डैडी मम्मी डैडी, तो भगवान को याद करने के लिए कोई विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां संबंध है हमारा जुड़ा हुआ है, पता है जो माँ बाप की प्रॉपर्टी है उसके हम सभी मालिक हैं, हकदार हैं। तो जो भगवान की प्रॉपर्टी है उसके भी हम हकदार हैं, लेकिन पहले संबंध जोड़ना पड़ेगा उसके लिए, उसके साथ गहरी दोस्ती करनी पड़ेगी। बताया ना गीत में, खुदा ने खुद आकर दोस्ती की है, जो हमारे दिल के आशियाने में बस गया है, क्योंकि उसने हमारे में बहुत सारी विशेषताएं देखी, उसने उसने हमारी तस्वीर देखी, भविष्य की तकदीर देखी है। ऐसे थोड़ा भगवान ने हमको पकड़ लिया, आगे कुछ तो खास है, अपन लोग साधारण थोड़ा नहीं है। तो भगवान ने हमारी विशेषताओं को देखा, कितनी बड़ी बात है। एक एक आत्मा यहां पहुंची है किसके बलबूते पर, किसके बल पर, जो सत शिक्षक है, उस सत शिक्षक ने अनेक टीचर बहनों को सेंटरों पर बिठा के हम सब आत्माओं को निकाला और यहां तक पहुंचाया। तो हमारे ऊपर भगवान का कितना प्यार है, कैसी हमारी उसने तस्वीर बना दी है। ब्राह्मण बनने के बाद सभी के चेहरे चेंज हो गए हैं, हुए कि नहीं हुए, है ना। बाबा कहते बड़े ब्यूटीफुल बन गए हो, सबसे ज्यादा फैशनेबल कौन है संसार में, ब्राह्मण। बाबा ने मुरली में कहा था ना, सबसे ज्यादा फैशनेबल कौन है, हम ब्राह्मण आत्मा है, हमारे फैशन का कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, और ये फैशन सारा गुप्त है। संसार में फैशन किस लिए करते हैं, दिखावे के लिए, अच्छे अच्छे जैकेट कोट टाई वाई सूट वूट पहनेंगे, और हमारा तो सिंपल कपड़ों में इतनी ब्यूटी है, रूहानियत है, क्योंकि यहां से प्राप्ति है। वो संसार का जो फैशन है वो तो आकर्षण करता है, उस फैशन में दुख समाया हुआ है, वो फैशन विनाशी है और ये वाला फैशन अविनाशी है। यहां सुख की, किसी से हम ब्राह्मण से मिलते हैं ओम शांति बड़े प्यार से बोलते हैं तो एक दो को मुस्कुराते नहीं मुस्कुराते तो कितनी खुशी मिलती है। अच्छा बाजार में कहीं जा रहे हैं भीड़ में, एक ही कहीं ब्राह्मण दिख जाए, रंगीन कपड़ों वाले बहुत सारे चले हुए हैं और एक ही ब्रह्मा कुमारी बहन दिख जाए, ब्रह्मा कुमार भाई दिख जाए तो दूर से देखे कितनी खुशी होती है। या? तो हमारी जीवन शैली बदल दी भगवान ने, कैसी तस्वीर बना दी। तो उसने हमारे आशियाने के अंदर बैठ के क्या क्या कर रहा है वो हमको भी नहीं पता चल पाता है, तो उसको ना अंदर ही अंदर देखते रहना है। बाबा ने कहा ना यही सोचो कि बाबा मेरे दिल में बैठा हुआ है, मैं बाप के दिल में हूं और बाप मेरे दिल में बैठा हुआ है, तो ये सोचना कि बाबा मेरे दिल में बैठा हुआ और क्या क्या कर रहा है उसको देखते रहना अंदर में, भगवान अंदर में क्या बैठ के कर रहा है। क्योंकि हम सबको आदत तो पड़ी है ना दूसरे क्या करते हैं देखने की आदत, तो देखना है तो अंदर भगवान को देखो, अंदर क्या क्या बैठ के कर रहा है, हमारे प्रति क्या क्या योजनाएं चल रही हैं अंदर में, फ्यूचर में हमको कौन सी कुर्सी पर बिठाएगा वो, और अभी हमको कौन से पुरुषार्थ के लिए प्रेरित कर रहा है, कौन से हमारे अंदर कमजोरियां हैं जिनको वो जिनसे छूटने के लिए हमारे में शक्ति भर रहा है या कुछ टचिंग कर रहा है, अच्छे अच्छे संकल्प, और संकल्प तो सभी को टचिंग होते हैं, ऐसा कोई भी ब्राह्मण बच्चा नहीं होगा जिसको बाबा के संकल्प टचिंग नहीं होते हो, जिसको बाबा की मदद ना मिलती हो, हर एक को मिलते हैं, चाहे कोई माताएं हैं पिताएं हैं बच्चे हैं बहनें हैं भाई या कोई भी है, सभी को बाबा किसी ना किसी रूप से टच कराता है। आज के मूल्य में था टचिंग की पॉइंट, कौन सी थी मुरली के ना कई शब्द पकड़ लेने हैं और उस शब्द के पीछे बहुत सारा विस्तार होता है, तो टचिंग की बात कौन सी थी, डबल विदेशियों के साथ। बाबा ने कहा सेवाएं करते हैं डबल विदेशी, लौकिक अलौकिक दोनों बैलेंस रखते हैं, बुद्धि समय शक्ति पूरा खर्च करते हैं, बैलेंस रखते हैं, घर को भी संभालते हैं विदेशों में और अलौकिक सेवा भी करते हैं, बाबा की सेवा भी करते हैं। बाबा ने कहा अगर अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा करते हैं और बाद में कोई सेवा रह भी जाती है तो बाबा उलाना नहीं देंगे, उस सेवा को किसी को टच करा के भी सेवा करा लेंगे। बोला था कि नहीं बोला, तो कैसे याद आ गए, तो सारा अंदर में तो है वो, तो उसको बार बार खंगालना अंदर से कि हमारी बुद्धि में क्या क्या भरा हुआ है, क्योंकि इन ज्ञान रत्नों को हम शलकेंगे ना तो दूसरे पत्थर ही भरते जाएंगे अंदर में, कुछ ना कुछ तो हम ग्रहण करते रहते हैं, चाहे आंखों से ग्रहण कर रहे हैं, चाहे कानों से ग्रहण कर रहे हैं, चाहे बोल से ग्रहण कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम ग्रहण करते रहते हैं, स्वप्न में भी ग्रहण करते रहते हैं। तो जब हमको ज्ञान रत्न मिलते हैं तो उन ज्ञान रत्नों को थोड़ा शलकाना चाहिए, नहीं तो उनका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा नहीं। तो बाबा कहते तुम सतो प्रधान तो सारी विषभ सतो प्रधान, तुम गोल्डन स्थिति तो विषभ गोल्डन स्थिति, तुम रोएंगे तो जग रोएगा, तुम हंसेंगे तो जग हंसेगा। अभी हमारा बाप के साथ विशेष पार्ट है, कहा ना बाबा ने बोले में तुम ब्राह्मण बच्चों का बाप के साथ विशेष पार्ट है, हर एक ब्राह्मण आत्मा विश्व को परिवर्तन करने के कार्य में सहयोगी है। कितनी बड़ी लाइन है, हर एक ब्राह्मण आत्मा विश्व को परिवर्तन करने के कार्य में सहयोगी है, चाहे छोटे बच्चे भी हैं लेकिन फिर भी विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं। कैसे कर रहे विश्व को परिवर्तन, दादी जब शुरू में आई थी तो उनको तो पता ही नहीं था विश्व क्या होता है, लेकिन फिर भी विश्व परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि हमको देख तो रहे हैं ना लोग सारे। छोटा बच्चा अगर टीवी चैनल पर थोड़ा सा अपने बाबा का परिचय दे दो तो विषम सेवा हो जाती कि नहीं, और उससे बड़ी सेवा तो मनसा सेवा। अगर हम सबके प्रति सोचें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं जगत माता हूं, है ना, तो वो पालना के संस्कार हमारे अंदर आते हैं और हम सबके प्रति अच्छा सोच रहे हैं तो हम विश्व कल्याणकारी हो गए कि नहीं हो गए। तो सारे विश्व पर प्रभाव हमारे संकल्पों का पड़ता है, इसलिए बाबा कहते हैं ना शास्त्रों में विज्ञान ब्रह्मा ने संकल्प किया तो सृष्टि का निर्माण हुआ। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने आप में ब्रह्मा है ना, तो हम सब आत्माओं का बाप के साथ विशेष पार्ट है। कौन सा, जैसे बाप लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा भी लाइट हाउस माइट हाउस है, विश्व को परिवर्तन करने के कार्य में सहयोगी है। तो हमको देखना है सारे दिन में हम कितना सहयोगी बनते हैं, चाहे तन से मन से धन से समय से अच्छे अच्छे संकल्पों से अच्छे अच्छे चिंतन से, अगर हम योग में बैठते हैं, योग नहीं लगता है तो अच्छे अच्छे संकल्प लिखें, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, फरिश्ता हूँ, मुझ फरिश्ते से विश्व को पवित्रता सुख शांति की किरणें जा रही हैं, सारा विश्व परिवर्तन हो रहा है, सारे विश्व को पवित्रता का आकाश जा रहा है और सब आत्माएं पवित्र बनती जा रही हैं, प्रकृति के पांचों तत्व पवित्र बनते जा रहे हैं, ये भी योग है। और ये योग सबसे पावरफुल होता है क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा मन बुद्धि सारी कर्मेंद्रियां उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। कई दफा देखा गया है योग में बैठने से अगर हमारा मन बुद्धि भटकता तो उसमें लिखो, वो और ही पावरफुल हो जाएगा और वो हमारे पक्के हमारे संस्कारों में चला जाएगा क्योंकि हमने पूरी तन्मयता से पूरी एकाग्रता से वहाँ हमारा फोकस हुआ है और जिस चीज़ को हम बड़ी रुचि से गहराई से देखते हैं वो परमानेंट हमारी अपनी हो जाती है। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा सहयोगी है विश्व को परिवर्तन करने के कार्य में। बाबा ने कहा ना यहाँ ब्राह्मण आत्मा सर्व ज्ञानों से संपन्न है तो फ्यूचर में भी संपन्नता होगी, आप भविष्य की तस्वीर हो। हर ब्राह्मण आत्मा प्राप्तियों से संपन्न है, अगर आपके पास कोई अप्राप्ति वाली आत्मा आए तो वो प्राप्ति की अनुभूति करे, रोती हुई आए तो वो मुस्कुराने की अनुभूति करे, प्रसन्न चित्त हो जाए, उसके आंसू जैसे एकदम खुशी में तब्दील हो जाए। नाम ही इनका खुशी है जो आगे बैठी है, तो किसका नाम खुशी है? अच्छा उनका है, दोनों एक जैसी है। वो खुशी है, ये प्रसन्नता है कि मुस्कान प्रज्ञा, अच्छा तो प्रज्ञा भी बहुत, वो तो हमेशा खुशी रहती है। तो बाबा कहते हैं कोई भिखारी बनकर आ जाए और तुम्हारे पास तो कैसा होके जाए, भरपूर होकर जाए, है ना, रोता हुआ तो है, मुस्कुराता हुआ जाए। बाबा ने कहा ना तुम भी बाप के लिए गीत गाते हो, कौन सा? और बाबा आपने मुस्कुराना सिखा दिया, है ना, जो हमारी खुशी गायब हो चुकी थी, ग्रहण लग गया था, खुशी को कोई चुरा के ले गया था माया, क्योंकि माया बड़ी पहलवान है। आज बताया ना माया कितनी पहलवान है, वो पहलवान के साथ पहलवान होकर ही आती है और उसको अच्छा कौन लगता है? ब्राह्मण आत्मा अच्छी लगती है। क्यों ब्राह्मण आत्मा अच्छी लगती है? है? ब्राह्मण आत्माएं रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है और क्यों अच्छी लगती है उसको? क्योंकि हम भगवान के बने हैं, भगवान से वो छीन ले तो अपने उसको खुशी होती है कि भगवान से भी मैंने छीन लिया, अच्छी लगती है। और हमारी लंबे समय से दोस्ती थी माया से, अब उसको छोड़ दिया तो दोबारा दोस्त वापस आए तो खुशी होती है ना। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा हमारे पास आए अगर भिखारी बनकर आए तो भरपूर होकर जाएं, है ना, खुश होकर जाएं, उनका रोना छूट जाए और मुस्कुराना वो सीख जाएं, तो हमारी ब्राह्मण जीवन शैली में निरंतर वो खुशी दिखाई देनी चाहिए। और वो खुशी तब होगी जब हम खुशी का खजाना अपने अंदर भरेंगे। तो इस जो तस्वीर के अंदर ना, ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर के अंदर हमको रंग भरने हैं, ज्ञान का रंग, गुणों का रंग, शक्तियों का रंग, पवित्रता का रंग, खुशी का रंग, और कौन कौन से रंग है, हैं जी, प्रेम का रंग, आनंद का रंग। तो रंगदार बनाना ब्राह्मण जीवन, ये रूखा सूखा नहीं, क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी ब्राह्मण। बाबा ने कहा ना तुम ब्राह्मण आत्मा ही बाप के साथ अनेक आत्माओं को प्राप्त कराने के लिए कौन सी आत्मा है? काम धेनु, कितनी बड़ी बात है, काम धेनु, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले काम धेनु। और जो काम धेनु आत्मा है वो इच्छा मात्र अविद्या होती है, और जो इच्छा मात्र अविद्या वाली आत्माएं हैं वो भगत आत्माओं को और जीवन मुक्ति वाली आत्माओं को भी अनेक जन्मों के लिए तृप्त कर देंगी, उनको कोई भी इच्छा नहीं, उनको भी इच्छा कोई नहीं रहेगी। तो बाबा हमको कितने ऊंचे दृष्टिकोण से देखते हैं कि कितनी आत्माओं को तृप्त करेंगे, और हमारी वो अवस्था होनी चाहिए पूरा काम धेनु की तरह। काम धेनु का टाइटल किसको कहते हैं? मम्मा के लिए कहा जाता है, है ना। और माउंट आबू में भी एक पुरानी किंवदंती है, यहां भी काम धेनु गाय को कहते हैं ना, तो क्या शास्त्रों में लिखा है कि माउंट आबू में एक गाय ना गड्ढे में गिर गई थी काम धेनु, अब उसको निकालने के लिए क्या किया जाए? तो देवताओं ने ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की, तो फिर सरस्वती नदी आई और वो उसको ऊपर लेके आ गई और वो पानी से बाहर निकल गई, और फिर सरस्वती नदी गुप्त हो गई, इसलिए मम्मा गुप्त हो गई है, हम सबको निकाल के चली गई, है ना, है ना। और उसके बाद वो गड्ढा फिर रह गया। अब बोला अगर ये गड्ढा खाली रखा जाए तो इसमें फिर दूसरे भी गिर सकते हैं। अब इसको भरेंगे तो क्या करें उसको भरने के लिए, है? तो हिमालय से प्रार्थना की होगी तो उसने अरावली पर्वत के बड़े बड़े पहाड़ भेज दिए, उससे भर दिया गड्ढा। ऐसे किंवदंती है शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं और हम उनको कितना रोचक तरीके से सुनते थे और सत्य वचन महाराज कहते थे, ठीक है ना। और अभी बाबा ने हमको कितना अच्छा शुद्ध पवित्र ज्ञान दे दिया एकदम समझ स्पष्ट, जिसको छोटा बच्चा भी समझ सकता है, अनपढ़ भी समझ सकता है, माताएं भी समझ सकती हैं, पिताएं भी सब समझ सकते हैं इसको, तो कितना अच्छा ज्ञान दे दिया। तो हम सभी बाप समान काम देनु हैं, हरेक आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या हैं, अर्थात किसी प्रकार की हमको कोई हद की इच्छाएं आकर्षित न करें, हद के संसाधन आकर्षित न करें। बाबा ने कहा हमेशा बेहद की स्थिति में स्थित रहो, क्योंकि अभी की संपूर्ण स्थिति का आधार ही भविष्य की सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। और उसमें 9 बातें बताई, अभी कौन कौन सी 9 बातें थी जो बताएगा ना उसको एक टैबलेट दे देंगे, और टैबलेट डिपार्टमेंट का है। तो कौन कौन सी 9 बातें बताई? सबसे पहली बात, यहां एक मत होंगे तो क्या होगा? एक राज्य होगा। एक मत के आधार पर एक राज्य बताया, उसके अलावा एक भाषा, एक धर्म, सब चीजें एक एक होगी। हाँ जी, हाँ जी, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, है ना, और एक कुल होगा, एक राज्य होगा। हाँ जी, एक के हाथ में सत्ता होगी। हाँ, संसार की तरह यहाँ राजनीतिक उठा पटक नहीं होगी, जो छीन कुर्सियां छीनते रहते हैं, है ना। तो ये दूसरी बात थी, यहां देह के आकर्षण से डिटैच, तो वहां क्या होगा? तंदुरुस्ती, तन तंदुरुस्त हो जाएगा। तो यहां जितना हम देह से डिटैच, दूसरों के देह से भी डिटैच, संबंध संपर्क में आना है, बड़े प्यार से मिलना, लेकिन देह में अटक नहीं जाए हम, ना अपनी देह में ना दूसरों के देह में, है ना। तो इसमें क्या होगा? तंदुरुस्ती मिलेगी। तीसरी बात, अशरीरी बनने से पहले भी बताया, हाँ, अगर हम अशरीरी अवस्था का अनुभव करेंगे, यहाँ अभ्यास करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी अनुभूति में रहेंगे, स्थिति में स्थित रहेंगे, तो निरोगीपन, निरोगी बन जाएंगे और लंबी आयु। कितनी लंबी आयु होगी? 150 वर्ष। अगर 200 हो जाए तो भी कोई अर्जा नहीं है, क्या फर्क पड़ता है लेकिन 150 वर्ष है ना, ठीक है, तो निरोगी हो जाएंगे और लंबी आयु हो जाएगी। तीसरी बात, चौथी बात क्या बताई? हैं, उमंग, हाँ, मौज में रहेंगे, यहाँ बेफिक्र वाशा स्थिति में रहेंगे, तो वहां मौज में रहेंगे, तो यहाँ बेफिक्र वाशा हैं। पावा ने पीछे संडे की मुरली में बताया ना, बेफिक्र वाशा अर्थात सारे बोझ बाप को दे दिए। बोझ हम अपने पास रखे क्यों हैं? क्योंकि बाप को अपना साथी नहीं बनाया। आज की मुरली में एक और महावाक्य बाबा के बहुत सुंदर, जैसे योग की प्रैक्टिस है उसमें, कि हमेशा महसूस करो बाप का मस्तक, हमारे मस्तक पर हाथ है, और हाथ कौन सा है? श्रेष्ठ मत, अर्थात जो बाबा हमको श्रीमत देते हैं वो हमारी बुद्धि में, मन बुद्धि में उसके चिंतन चलते रहना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। तो वो वरदानी हाथ हमारे सिर पर है भगवान का, और वो स्मृति रहेगी। बाबा कहते सदा स्मृति रखो, इस स्मृति से क्या बन जाएंगे? सदा समर्थ बन जाएंगे, ताकत बढ़ जाएगी। तो अभी सभी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, सभी एक, ठीक है, सभी अपना अपने हाथ निकालो बाहर, बाहर ऊपर रखने के लिए नहीं बोला, देखा गड़बड़ कर दिया नहीं, रखना तो ऊपर ही है लेकिन बोला तो हमने बाहर था पहले तो बाबा कहते तुम बड़े ते बड़े होशियार बच्चन, होशियार आर्टिस्ट हो, है ना। तो सभी अपना हाथ कहाँ रखेंगे? सिर के ऊपर रखो, है ना, और सभी महसूस करेंगे कि बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है, और बाबा की सारी शक्तियां मुझ आत्मा में आती जा रही हैं, और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ, परमात्मा शक्तियां मेरी सारी कर्मेंद्रियों में समाती जा रही हैं, मेरी सारी कर्मेंद्रियां शांत, शीतल, शुद्ध, पवित्र होती जा रही हैं, मैं जैसे पवित्रता की मूर्ति बन गया हूँ, बन गई हूँ, मैं साक्षात्कार मूर्ति हूँ, परमात्म चरित्रों की साक्षात्कार मूर्ति हूँ। जिस भी आत्मा की दृष्टि मुझ पर आए उसको परमात्मा की ही स्मृति आए, ऐसी बाबा मुझ में परमात्म शक्तियां भर रहे हैं। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, पद्मा पद्म भाग्यवान, स्वयं दाता बरदाता भाग्य विदाता भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। उसने अपना सब कुछ मुझे लुटा दिया। वो जैसे मुझ आत्मा पर निछावर हो गया, वो जैसे मेरे दिल के आशियाने में समा गया, वो खुदा खुद दोस्त बनकर मेरा अपना बन गया। ओम शांति। तो घर में भी ऐसे कर लेना, जब योग नहीं लगे तो सीधा अपना ही हाथ ऊपर रख लेने का, तो उस समय मन बुद्धि भटकेगा नहीं। कम से कम अपने को याद तो रहेगा ना, ये हाथ किस लिए रखा मैंने ऊपर, नहीं तो कुछ भी सोचते रहेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस करनी है, योग के प्रयोग अपने आप ही रखने, फिर दूसरा प्रयोग ऐसे करना है जैसे बाबा ने मेरे हाथ पे पकड़े हुए हैं, है ना, और बाबा सारी शक्तियां मुझ में दे रहा है एकदम। जैसे लास्ट में ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो बड़े दादी को सारी शक्तियां ट्रांसफर कर दी, तो ऐसे रोज प्रयोग करने आइए जैसे बाबा ने मेरे हाथ पकड़े हुए हैं और सारी शक्तियां ट्रांसफर हो रही हैं। वो तो सागर है, खाली नहीं होगा, लेकिन फिर भी बाबा कहते मैं सारी शक्तियां तुमको दे देता हूँ। तो ऐसे स्थूल में भी प्रयोग करने हैं, क्योंकि सूक्ष्म में मन बुद्धि को पकड़ने के लिए थोड़ा मेहनत का काम लगता है, लेकिन स्थूल तो आदत पड़ी है ना, तो स्थूल में तो कर सकते हैं ना। तो किसी न किसी तरीके से हमारा बाबा से लिंक जुटा रहेगा। तो चौथी बात थी, जितना बेफिक्र बादशाह बनेंगे उतना मन की मौज होगी उधर। पांचवी बात कौन सी थी? हाँ, जितना यहां ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने से संपन्न होंगे, ये दूसरा पॉइंट है ना, भूल गया बीच में। हाँ, ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने से यहां संपन्न होंगे उतना बांध संपन्नता होगी। तो पांच पॉइंट हो गए। छठी पॉइंट बाकी के बोलो, जो नहीं बोल रहे वो बोलो, कुछ भी बोलो। अच्छा चलो, उसमें से आ जाएगा देखना। हाँ देखो, माता जी ने बता दी ना, यहां कितना छोटा परिवार, 9 लाख ब्राह्मण, कितना छोटा है। तो यहां छोटा परिवार अर्थात संबंध जो है, कौन से संबंध है? माता पिता भाई बहन संबंध है, उसी के आधार पर वहां भी छोटा सा संसार होगा। और नेक्स्ट, यहां मात पिता के साथ संबंध है तो वहां विश्व महाराजन विश्व महारानी, वो भी जैसे हमारे मात पिता है, इस रूप में स्वीकार करेंगे। और नेक्स्ट, यहां स्नेह से सभी के साथ हम मिलते हैं तो वहां प्रजा भी स्नेह के साथ मिलेगी, कोई संकोच कोई भय नहीं होगा, है ना। यहां भी जैसे देखो, कोई कोई होते हैं दादियों के साथ या बड़ों के पास सीधा चले जाते हैं, और कोई कोई संकोच करते हैं, तो ऐसे वहां कोई संकोच की बात ही नहीं है, क्योंकि सभी अपने ही। जैसे घर में बड़ों के साथ संकोच करते हैं कोई बच्चे, दादा के कंधा पर चढ़ जाएंगे, बाल खींचेंगे उसके, अगर बाल होंगे तो, अगर उतर गए होंगे तो क्या खींचेंगे, क्योंकि आजकल बाल जल्दी उतर जाते हैं, देखो अपने भी उतर गए। तो कोई संकोच कहीं भय नहीं होता उनका ना। तो ये वहां सारी चीजें होंगी, अभी की स्थिति का आधार है। जैसे हमारी अभी संपूर्णता की स्थिति है तो वहां 16 कला संपूर्ण स्थिति का अनुभव अब भी होना चाहिए हमको, है ना। तो एक ये बात थी। फिर बाबा कहते अपने आप से प्रश्न पूछो कि कहां तक ये तकदीर की तस्वीर बनाई है, तो ये जांच का विषय है। तो अपने आप से पूछना है कि मैं अपनी तस्वीर को ऐसा श्रेष्ठ बना रहा हूं जिससे भविष्य की तकदीर मुझे दिखाई दे रही है ना। इतना सहयोगी सहयोगी हूं, बाबा ने कहा बाप दादा दाता और बरदाता बनकर हमेशा साथ दे रहा है ना। तो एक ये बात थी। फिर एक ये बात जो मस्तक में सिर वाली बात, वो तो सभी ने हाथ रख ही लिया, तो ऐसे ये अनुभव करना। फिर बाबा ने डबल फॉरनर से बात की, उसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन मुख्य मुख्य बातें लेंगे। बाबा ने मन का रोना कभी नहीं रोना है। मन का रोना तो क्या होता है, उससे अगर मन का रोना तो उसके ऊपर इफेक्ट हमारे तन पर भी पड़ता है। मन का रोना अर्थात क्या, कमजोर संकल्प करने, अपने आप को हीन भावनाएं समझनी, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, मुझे कोई पूछता नहीं है, मैं ऐसे ही हूं, कमजोर हूं, नहीं, ऐसे संकल्प नहीं करने, उसका सारा हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए वरिष्ठ भाई बहन जो क्लास कराते हैं अच्छे अच्छे संकल्पों की प्रैक्टिस करने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि हर संकल्प का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, ना केवल हमारे शरीर पर बल्कि सभी के शरीर पर पड़ता है। जिस एटीट्यूड से, जिस हम दृष्टिकोण से दूसरों को देखते हैं, उसका प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ता ही है। इसलिए बाबा जो दृष्टि देते हैं वो दृष्टि का प्रभाव हमारे ऊपर कितना पड़ जाता है, क्योंकि बाबा की सोच तो एकदम विशाल है। तो अपनी बुद्धि को विशाल बनाने के लिए चिंतन को बढ़ाना है। पीछे वाली संडे में बाबा ने 6 प्रकार की बुद्धि बताई थी, कौन कौन सी? हाँ, स्वच्छ बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, अलौकिक बुद्धि, महीन बुद्धि, विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि, और भी है कोई? बहुत बुद्धि है, तो जितना चिंतन कर दो खींच सकते हो। तो बुद्धि हमारी ऐसे तब बनती जाएगी, तभी तो उसका ज्ञान हमारी बुद्धि में ठहरेगा, नहीं तो ठहरेगा ही नहीं। तो देखना मन का रोना ही रोना। फिर बाबा ने एक ही बात की थी कि सेवा का, हाँ एक और मुख्य बात, योगी बच्चों को सहयोग स्वतः ही मिलता है। और विदेशियों के साथ एक बात की थी, अगर योग युक्त हैं तो क्या होगा? सूर्य मुरली सुनी की नहीं थी? तो क्या सुना था? बच्चों को तो और ही सुनना चाहिए। बाबा ने कहा स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, पिछले संडे की मुरली में था, भगवान शिक्षक है, शिक्षक जिस समय पढ़ा रहा है तो उसमें हमको पढ़ाई पढ़नी है। अगर कोई कहे उस समय कि मैं तो बहुत गहरी अनुभूति कर रहा हूँ, दूसरे संबंध से बाप को याद करो, तो बाप नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो नियम कायदे प्रमाणनीय है। तो जिस समय पढ़ाई होती है उस समय पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि अभी की आदत फिर फ्यूचर में काम आएगी। अगर अभी हमने आदत बिगाड़ दी तो फ्यूचर में बिगड़ जाएगी। और लास्ट में वरदान स्लोगन पर तो 3 बातें और हैं। एक सहज योगी जीवन का आधार बताया था, क्या? एक बाप को ही अपना संसार बना लो तो बुद्धि जंगल में नहीं जाएगी, अर्थात पुराने संसार में नहीं जाएगी। दूसरी बात, वरदान में बाबा ने कहा बाप के लब में लवलीन रहो और चढ़ती कला का अनुभव होगा तो सफलता मिलेगी। और इसमें क्या होगा, 3 बातें होंगी उसमें, कौन सी? संकल्प, बोल, कर्म, तीनों में रूहानी जादूगर बन जाएंगे। जिसको भी देखेंगे उसको अनुभूति होगी। और स्लोगन क्या था, मुरली में लिखा हुआ वहीं रह गया। तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना अपने से। सच्चा पुरुषार्थ में वास्तव में वही है जो हम अपने आप से मेहनत करते हैं। योगी तू आत्मा वह है जो यहां बैठे हुए हैं, हाँ, जो लाइट माइट स्वरूप में स्थित रहते हैं, वो कौन है? तो आप सभी योगी तू आत्मा है, लाइट माइट तो निकल रही है आप सबसे। ओम शांति।